संसारके रसमे वही आनंद है, सब कुछ निरानंद है। परंतु कृष्ण भक्ति रस ऐसा है जिसका पान करते हुए किंचित मात्र प्रवेश हो जाए ना तो हृदय कभी सुखेगा और ना ही किसी प्रकार के दूसरे रस में आसक्ति बनेगी। संसार में सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण भक्ति रस, इसलिए कृष्ण भक्ति रस में डूब जाए। इसी कारण चैतन्य महाप्रभु ने ये परम उदार अवतार के अवतार में उन्होंने करुणा का विस्तार किया। भगवान ने संसार में सृष्टि रचना की, प्राणी जगत में जीवों को प्राणी शरीरों में भेजा, उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में मनुष्यों को बनाया। केवल निरंजुला मनुष्य नहीं, उनके अंदर में रस भावना को दी जो और प्राणियों में किसी में नहीं मिलेगा। जैसे देखा जाए इस संसार में हम लोगों की भावना कैसे बटी हुई होती है। घर में कोई व्यक्ति आया है, उनको बड़े शांत भाव से गंभीर भाव से बातें करते हैं, आसन देते हैं, पानी देते हैं और वार्तालाप भी होती है, तो इसमें क्या भाव निकलता है? शांत भाव। अपने गुरुजनों के प्रति जो सेवा की भावना है वो दास भाव है। बंधु बंधु मित्र मित्र मिल जाए तो गले से गले लगाते हैं, और अपने बच्चों के प्रति लाड प्यार स्नेह ममता है या नहीं यह वात्सल्य भाव है। पति पत्नी का जो मधुर संबंध है इसको मधुर भाव कहा जाता है। तो भगवान ने मनुष्यों को बनाया तो उनके अंदर में यह भावना भी दी है, इसलिए तो हम संसार में जी रहे। परंतु हमारी भावना आज बिखरी हुई है, अशुद्ध है, भौतिक प्राणियों के प्रति भावना बह रही है। वही भावना जब हम भगवान के प्रति लगा दें, हमारे जीवन का मोड़ कृष्ण की ओर लग जाए, उनके प्रति हमारी निष्ठा भावना हो, तब वही शुद्ध हो जाता है और परिशुद्ध होकर के प्रेम के रूप में परिणत होता है। वही शांत भाव, दास भाव, सख भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव आ जाता है। इसलिए प्राणियों में मनुष्यों में ये भावना तो भगवान ने दी है, परंतु हमने उसका अपव्यवहार किया, गलत जगह प्रयोग किया। भगवान ये भले ही भगवान ने सृष्टि रचना की, प्राणियों के द्वारा प्राणियों के अंदर में स्नेह ममता प्रति जगा करके प्राणियों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि की और प्राणियों के द्वारा प्राणियों का पालन किए और प्राणियों के द्वारा प्राणियों का संहार भी करवाते। काल आत्मा है, काल रूप में सबको परिचालना करते हैं, परंतु मनुष्यों में जो भावना की है उस भावना को यदि हम भगवान में के चरणों में समर्पित कर दें, यही जीवन में शुद्ध होता है। इसलिए श्री नारायण जी ने जब महाप्रभु जी ने यह बात कही कृष्ण भक्ति रस में विवाहित ऐसे कोई रसिक संत मिल जाए, उनके चरणों में जीवन का नौछावर कर दें, तब जीवन का मोड़ घूम जाएगा। करोड़ों जन्म तक साधना करते हुए जो भाव की प्राप्ति नहीं होती है वह व्रत का जो भाव है कि शुद्ध भाव भक्तों के हृदय में प्रकाशित हो जाता है। उस जगत का जो भाव है भक्तों के हृदय में आता है। भगवान की भक्ति कैसे हो? एक प्रीति मूला भक्ति। प्रीति को भी दो भाग से विभाजित किया गया, एक संभ्रम भाव युक्त भक्ति और एक निस्संकोच भाव जो जहां पर निस्संकोच भाव से प्रतीत हो, कोई संभ्रम संकोच नहीं है, इस प्रकार के प्रतीत हो। और जहां संभ्रम संकोच से युक्त होकर डरे हुए कुछ भक्ति करते, भगवान कृष्ण ने देखा जगत के लोग मेरी भक्ति करते हैं, पर तो इस भक्ति में मैं तृप्त नहीं हो पाता। बोले क्यों? ऐश्वर्य सिद्धि के प्रेमे नहीं मोर प्रीत। जहां पर ऐश्वर्य भाव प्रभु का ज्ञान, भगवान को फूल जल तुलसी चढ़ाना होता है, बताशा देना होता है, दे दिया, परंतु कोई प्रीति नहीं, कोई आदर नहीं, कोई श्रद्धा नहीं। मंदिर बने हुए हैं, मंदिर की नगरी है, यहाँ तो मंदिरों की नगरी जम्मू है, परंतु मंदिरों में वास्तविक क्या प्रीतिपूर्वक सेवा होती है? भगवान कृष्ण कहते हैं लोग तो हमें फूल या तुलसी बताशा और इलायची का भोग लगा देते हैं, बताशा भी चढ़ा देते हैं, बूंदी की दोना भी दे देते हैं, पर हम उससे तृप्त नहीं होते। हाँ, मेरी प्रतिज्ञा है जे यथा माम प्रपद्यं ते तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे जिस रूप में मेरा भजन करता है, मैं उसे वैसे ही उसी रूप में भजन करता। भगवान कोई स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थ प्रेमी है, इसलिए भागवत के भगवान श्री कृष्ण वे निस्वार्थ प्रेमी होकर के ये क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों का पराधीन हूँ, वे मेरे हृदय है, मैं उनका हृदय हूँ, वे मेरे बिना किसी को नहीं जानते, मैं भी उनके बिना और किसी को नहीं जानता। इस प्रकार जो भक्त अपना हृदय सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, भगवान भी ऐसे भक्तों को अपना लिए हैं। और वे कहते हैं जिन्होंने पुत्र परिवार घर संसार बंधु बांधव धन दौलत विषय संपत्ति ये सब के प्रति मोह आसक्ति को तोड़कर जिन्होंने हमारे चरणों में अपना सर्वस्व दे दिया है, मैं ऐसे भक्तों को कैसे छोड़ सकता हूँ? कथम ताम तत्त्वमुत्सहे, मैं कदापि उनको छोड़ नहीं सकता। इसलिए मेरे जीवन की प्रतिज्ञा है कि ऐसे भक्तों की मैं भी सेवा करता हूँ। भगवान केवल सेवा लेते हैं, सेवा देना नहीं जानते, ऐसी बात नहीं। कोई व्यक्ति भगवान में ये माला पहनाता है तो भगवान क्या करते हैं, लाखों माला उनके गले में डलवा देते हैं, सारी दुनिया उनके चरणों को पूजते हैं। ऐसे जो संत पुरुष देखिए आज आपके सामने विराजमान हैं, सारी दुनिया सारा विश्व जिनके चरणों में लौट रहे हैं और सभी लोग उनकी पूजा करते हैं, अपने कल्याण की कामना करते हैं, क्या इन संतों ने क्या किया? भगवान के चरणों में अपना मन प्राण हृदय प्राण सर्वस्व नौछावर कर दिया। भगवान को कोई एक फूल चढ़ाता है, सारे संसार के लोग उनके चरणों में पुष्पांजलि देते। भगवान कहते हैं कोई मुझको एक दाना अन्न भी मुझको कोई खिलाता है, सारा संसार उनको खिलाता है, कोई अभाव नहीं देता है। सारी दुनिया के लोग संसार के पीछे माया के पीछे भागते हैं और सारे लोग माया को विषय को धन दौलत को छुपा कर भगवान की ओर चलते हैं, सारा संसार उनके पीछे पीछे दौड़ता है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं ऐसे माया के पीछे दौड़ करके क्या होगा, भगवान के पीछे दौड़े, उनके चरणों की ओर चले। माया के पीछे दौड़ते दौड़ते हमारी बुद्धि बहुत संकीर्ण हो गई, हमारा हृदय बहुत छोटा हो गया है और हम इतने छोटे इतने क्षुद्र बन गए जो कि हमारी कोई गिनती भी नहीं, घास भूसे की तरह चला और घास भूसे में हमारा जीवन चला जाता है। इसी तरह से माया है, परंतु इससे संसार रूपी बगीचे में जो हम फूलों के जैसे खिल रहे हैं, ऐसे हमारे जीवन पुष्पों को कोई संत महापुरुष कृपा करके उठा ले और भगवान के चरणों में समर्पण कर दे, उसी से वास्तविक कल्याण। जिस समय हमारा जीवन पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित, इसलिए भगवान ने क्या बताया, मैं उससे तृप्त नहीं होता, ऐसे पूजा से मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति ऐ भावे जई मोरे करे शुद्ध भक्ति। कोई व्यक्ति भगवान को अपने प्रति से प्यास, अपना पुत्र मानकर, अपना सखा मानकर, अपना प्रियतम मानकर के सेवा करता है, मैं ऐसी भक्ति से प्रसन्न होता हूं, उनके अधीन बन जाता हूं, इसलिए भगवान को कौन पाता है, रसिक भक्त ही पाते, जिनके हृदय में रस की भावना जागृत हुई ऐसे भक्त ही प्राप्त करते हैं। इसलिए जिनके अंदर ये भावना जागृत हुई है ऐसे व्यक्ति भगवान को प्यार करते हैं। भक्ति क्या है, अनंत ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, जहां पर भगवान में अनंत ममता हो, प्रीति हो, आदर हो, उनको खिलाए बिना हम खा नहीं सकते। किसी को बच्चे की भावना हो, बालक की भावना है, भगवान को पुत्र रूप में पुत्र भाव में भावना करते हैं और सेवा करते हैं, क्या उनको खिलाए बिना आप खा लेंगे, कोई अपने बच्चों को खिलाए बिना कोई माता पहले खा लेती है, तथापि संभव नहीं, पहले बच्चों को खिलाते। इसी तरह से भगवान के प्रति आदर होगा तब हम उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, उनकी हम सेवा करेंगे, तब हमारा जीवन आनंदमय प्रेममय होगा। इसलिए श्री रामानंद जी ने शांत दास सख वात्सल्य और मधुर इन पांचों रसों का एक एक करके वर्णन किया। शांत रस के भक्त जैसे शरद सनंदन सनातन शरद कुमार आदि ऋषि लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, कृष्ण ही कनिष्ठ सहो अनिष्ठता गुणे, कृष्ण के प्रति वे भगवान है, पर ब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर तत्व ज्ञान से भरपूर है, उनके लीलाओं का चिंतन करते हैं। इत्थान सतां ब्रह्म सुखान भूत्या, ब्रह्म सुख की अनुभूति हृदय में उनको अनुभव करते हुए आनंद में खोए हुए हैं। ऐसे संत पुरुष सामने चार हाथ मात्र उनकी अर्ध मुद्रित नेत्रों में दृष्टि पड़ती, इस प्रकार भगवान में आविष्ट रहते हैं। कोई व्यक्ति उनके हाथ में कोई भोजन सामग्री दे जाए, पूरी सब्जी रख दिया जाए, कोई दे दे, उन्हें पता नहीं कि किसने दिया, और कौआ आकर के उठा करके ले गया, वो भी पता नहीं किसने ले गया। इस प्रकार भगवान में आविष्ट हैं, उन्हीं में तन्मय ये शांत रस के भक्त होते हैं, परंतु इनमें कोई सेवा नहीं होती। इसलिए जिनके अंदर में सेवा की भावना है वो श्रेष्ठ है दास रस के भक्त, जिनमें ममता है और सेवा की भावना है दास रस के भक्त एक प्रकार के होते हैं, जो ऐश्वर्य भाव से और एक ममता युक्त प्रीति भाव से विश्रम भाव से दो प्रकार के दास रस वाले होते। इससे आगे सख रस वाले, सख में भी जैसे पांडवों में सख भाव रहा है, इतनी प्रियता प्रगाढ़ता प्रगाढ़ संबंध, अर्जुन जो कुछ कहते हैं कृष्ण वही करते हैं, या कहे बिना वे अपने आप काम करते हैं, जैसे रथ के सारथी बन गए कि घोड़ों को भूख लग रहा है तो उनको खाना खिलाना पानी पिलाना, यहाँ तक कि घोड़ों का पैर दबाना पड़ेगा, थक गए हैं घोड़े, ये सब कुछ कर रहे हैं साथी बनकर के, क्यों, हमारे भक्तों के घोड़े हमारा प्रिय अर्जुन, अर्जुन के रथ के घोड़े हैं। इस प्रकार भक्तों के प्रति इतनी प्रियता है कि भगवान भक्तों की सेवा करने के लिए तरसते, हम क्या सेवा करें, कैसे हम भक्तों को प्रसन्न करें। सब कुछ दे करके भी फिर भी मानते और क्या हो, जिससे सब कुछ परिपूर्ण हो जाए। और भगवान भक्त क्या देखते हैं, हम भगवान को किस रूप में सेवा करें, हमारे प्रभु को हम कैसे प्रसन्न करें, वहां पर प्रेम होता है। एक दूसरों में जहां प्रियता की भावना है, सेवा की भावना है, वहां पर प्रियता, वहां पर भावना होती है। अर्जुन के सख और ब्रज के सख में भी बहुत अंतर हो जाता है। जैसे गीता में भगवान ने जब विराट रूप दिखाया, विश्वरूप, उस स्वरूप को दर्शन करते ही अर्जुन तो एकदम घबरा गए और हाथ जोड़ करके स्तुति प्रार्थना करने लगे। सखेति वक्ता प्रसभाम जदुत्तम, हे कृष्ण हे जादव हे माधवी जी, हे कृष्ण मैंने आपको सखा कह करके कितना हास परिहास किया। कृष्ण का हे जादव हे माधव क्या नहीं बताया, बहुत तरह की रस भरी बातें और मजाक की बातें बहुत कुछ सुनाए। इससे आप हमें छुआ करें, हमारी गलती हो गई, हम समझ नहीं सके। इस तरह से अर्जुन के अंदर में भी डर भय संकोच सबों को दिया जाता है। परंतु ब्रज के सखाओं में, अरे तुम्ही कौन बड़े लोग, तुम्ही आप इस समूह, तुम कौन सा बड़ा आदमी है, तुम और मैं समान, तुम्हारे पास तुम्हारे पिताजी के 9 लाख गाय हैं तो हमारे पिताजी के भी 11 लाख गाय हैं। हाथ पकड़ करके खींच लेते हैं सीधा उस सुबल आदमी, सखा लोग उनके साथ में खेलते हैं, धूल झोंकते हैं, झुकाते हैं। इसलिए भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दस्यम गतानां परदैवतेन मायास्पितानां नरदातकेन स्वार्थम विद्रहु कृतपुण्य पुण्या। सखाओं को कितना सौभाग्य था, जन्म जन्म के पुण्य पुण्य सुकृति, जिस सौभाग्य के बल स्वरूप आज कृष्ण के सखा बन करके वन विहार कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, कृष्ण उनके साथ आनंद का अनुभव कर रहे हैं, इस सख प्रेम का आस्वादन। इसलिए इनका जैसा सौभाग्य और किसको होता। दुर्वासा ऋषि जैसे ब्रह्मज्ञानी पुरुष पहुंच गए, बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया खेल रहे हैं सखाओं के साथ, बच्चों के साथ खेलते खेलते धूप झोंक रहे हैं, झुटा रहे हैं, मिट्टी में डाल करके ऊपर से बालू डाल रहे हैं। ऐसे समय में कृष्ण कन्हैया दौड़ते हुए दुर्वासा मुनि के पास में पहुंच गए। बोले कि साधु बाबा, साधु बाबा आप बताओ हम लोगों में कौन हारा है, कौन जीता है। दुर्वासा जी सोचने लगते, क्या यही परब्रह्म गोपाल, यही स्वयं भगवान, या कोई साधारण बालक ऐसे खेलकूद कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ जवाब भी नहीं दे पा रहे, स्तंभित हो गए, शुद्ध बुद्ध खो बैठे। ऐसी जड़ता आ गई कि दुर्वासा जी वहीं पर खड़े खड़े बैठ गए, जैसे बैठे अब कृष्ण कन्हैया तो गोदी में चढ़े, चढ़ करके दाढ़ी पकड़ करके बोले कि वो साधु बाबा बोलो ना, तुम गूंगा है क्या, बोलता क्यों नहीं है, हम लोग हमें कौन हारा है, कौन जीता। तब तक भी बोल नहीं पाए, उस समय पे देखते हैं कृष्ण के मुखारविंद में प्रवेश कर गए और अंदर जाकर के सारा विश्व ब्रह्मांड को देख रहे हैं, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र नाद नदी समुद्र पहाड़ पर्वत संपूर्ण ब्रह्मांड में घूम करके आए। घूमते घामते हुए फिर वही आकर के जैसे उपस्थित हुए, देखा कि अरे मैं तो यहाँ ब्रज गोकुल में ब्रज में बैठा हुआ हूँ, कृष्ण हमारे सामने खेल रहे हैं, ये तो परब्रह्म गोपाल स्वयं भगवान है, के साधन बालक नहीं। उस समय हृदय में उनका चिंतन करते हुए ब्रह्म सुख की अनुभूति ध्यान लगा रहे हैं, आनंद में खोए हुए ऐसे ब्रह्म सुख संपत्ति में डूबे हुए हैं। दास्य आराम पर नहीं, दस रस के भक्त वे उनको समझ रहे हैं कि हमारे परम देवता है, और साधारण मनुष्य सोच रहे हैं कि ये हमारा जैसा बालक है वैसे ये नंद जी का बालक है, इस तरह से समझ रहे हैं। किंतु जो भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम ब्रज विलासी ब्रज विहारी वृंदावन के बनों में वन वन में भ्रमण करते हुए वन विहार कर रहे हैं, सखाओं के साथ में खेल रहे हैं, कितने पुण्य पुण्य सुकृति और सौभाग्य है। इस प्रकार उनके सखाओं के सौभाग्य का वर्णन करते हुए दिखाया कि ये सखाओं का कितना प्रेम। और इससे आगे जबकि महाप्रभु जी ने कहा यो हवा आगे कहा आगे की बात कही, उस समय श्री रायरामद जी ने वास्तव प्रेम का वर्णन किया कि नंद और यशोदा जी को नंद महाराज तथा माता यशोदा जी को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है ऐसा सौभाग्य तो और किसी को नहीं है, जो कि नायाम सुखा वो भगवान दही राम गोपिका सुत ज्ञानी राम चात्मभूतानाम यथा भक्ति मता माता मोरे पुत्र भावे करे लालन पालन अति हीन ज्ञाने करे ताड़न भर्षण। माता पुत्र भाव से लालन पालन करती है, छोटा बालक जान करके हीन ज्ञान से कभी ताड़न भर्षण करती है, डांट टपट लगाती है, कान मलती है और रस्सी से बांध जाती है। जब उन्हें बांध देती है तब उस समय कृष्ण कन्हैया डरते हुए रोते हैं कि कहीं मैया मारे नहीं। इस प्रकार वास्तव प्रेम में स्वयं बधे हुए हैं। नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुत कि यशोदानंदन कृष्ण बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष जीवन भर सैकड़ों जन्म तक साधना करते रहे तो भी प्राप्त नहीं। बड़े बड़े योगी ऋषि जो हिमालय में पड़े हुए हो, लाखों वर्ष तक तपस्या करने वाले हो, ऐसे योगियों के लिए भी दुर्लभ संभव है। परंतु यथा भक्ति मतामिह भक्तिमान जनों ने जैसे प्राप्त किया, माता यशोदा ने जैसे कृष्ण कन्हैया को बांध दिया, शंकर जी तरस गए, नारद जी तरस गए, ब्रह्मा जी आए, देवी ब्रजभूमि में आकर के तरस गए, प्रार्थना करते रहे अभवति धन्ना ब्रज को रमण्य स्तनाम मृतम पिता अधिवते मुदा जासाम विभो वत्सतरात्म जात्मना जब तृप्त अत्यापथनाल मत्थरा। अहो ब्रज की गौएं और माताएं कितने सौभाग्यवती हैं, अहो अति धन्ना अतिशय अतिशय रूप में सौभाग्यवती धन्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण केवल देवकी नंदन में ये तो प्रमाद है, असल में पुत्र है तो माता यशोदा के जो कि ब्रजविलासी हैं और यशोदा जी के दुलाल हैं, केवल माता यशोदा के ही वास्तव प्रेम का आस्वादन किया। इतना ही नहीं, ब्रज की जितनी माता हैं जिनके अंदर यह भावना है कि कृष्ण गोपाल गोपाल को अपने प्राप्त करो और गोदी में ले करके उनको दूध पिलाओ मक्खन खिलाओ, उन माताओं की जो भावना है उन्होंने उस भावना को ग्रहण की। गौ माताओं की गायों की भावना है कृष्ण हमारे बछड़े बन जाते तो हमारा दूध पीता और मैं दूध पिलाता। इस प्रकार जिनके अंदर में स्नेह प्रीति ममता चित्त भावना है, ऐसा अगाध वात्सल्य प्रेम जिन गायों के स्तनों में वात्सल्य प्रेम के कारण इतना तृप्त राशि जो कि सुनहरी विश्व सुमहा उन कामधेनु गायों के स्तनों से दूध झरता हुआ जो कि क्षीर समुद्र को भर रहे हैं जो सुरभि गायें हैं। ऋग्वेद में ये भी वर्णन हुआ है जत्र भूरि सिंगा गावो जहां पर बड़ी बड़ी सिंह वाली ऊंची ऊंची गायें हैं और ये भी वर्णन कर रहे हैं कि जत्र भूरि सिंगा गावो बहुत सी गुणों वाली गायें हैं। ऐसे जो गायों का लोक भगवान ने उन्हीं के नाम से अपना लोक का नाम दे दिया गवाम लोक इति गोलोक गोलोक था गायों का वो गोपी ब्रजजनों का लोक अपना सब कुछ उन्हीं को समर्पण करते हुए उनके घर के किसी के बालक बन गए किसी के सखा बन गए किसी के प्राण प्रियतम बन गए। इस प्रकार अपनी मालिकाना तर्क को छोड़ दिया कि मैं मालिक नहीं हूं मैं गुरुधाम का अधिपति नहीं हूं ये लोग हमारे घर के मालिक हैं हम उनके घर के बच्चे हैं बालक। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रेम में जहां अपना सर्वस्व दे दिया ब्रह्मा जी कहते जहां ब्रह्म मोहन लीला में भगवान ने ये बात ब्रह्मा जी को मोहित करते हुए भक्तों के प्रेम को आस्वादन किया और उनके प्रेम को बढ़ा दी और उन्हें अपूर्व चमत्कार वाली लीलाओं का दर्शन करा दिया जो कि अहोति धन्ना ब्रजो रमन्य स्तन्नामृतम पिताम अधिपते मुदा बछड़े बन गए। जितनी गाय है उतनी गायों के बछड़े लाखों करोड़ों गाय सबके बछड़े बन गए और जितने सखा है सभी सखा बन गए। इस प्रकार बन करके सबके घर गए और सबके प्रेम का आस्वादन किया स्तन्नामृतम पिता अधिपते मुदा जो अत्यंत आनंद के साथ उस स्तन्नामृत गायों के और माताओं के स्तन का पान किया दुग्ध पान किया जो आज तक बड़े बड़े यज्ञ होते रहे उन यज्ञों में वे तृप्त हुए या नहीं हुए इसका कोई किसी को भी जानकारी नहीं परंतु तृप्त अध्यापथनाथरा आज तो बाल गोपाल श्री कृष्ण इस रूप में परित्रृप्त हो गए। ऐसे ऐसे प्रेम माधुरी और चमत्कारिता का प्रकाश किए महाप्रभु जी बोले यो हर आगे कहा आज जबकि और आगे की बात बताने की कही उस समय से राय रामंत जी ने कहा इस वात्सल्य प्रेम से भी बढ़कर के मधुर प्रेम जो प्रियतम भाव है ब्रज गोपियों की जैसी साधना चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा तो गोपियों के भाव को लाए जहां पर ब्रज में उद्धव जी गए गोपियों के प्रेम को हिमालय सदृश देख करके चमत्कृत हो गए उन गोपियों के चरणधर की प्रार्थना करते हुए वंदना करने लगे। ऐसे समय में उद्धव जी कहते हैं नायम श्रीयो अंगज नितांतरते प्रसाद सरयो सेता नलिन गंधरु चामुकुतो यन्या रासो सवे आस भुज दंड गृही तरकंठ लब्ध्वा शीशा जयुदगाद ब्रज सुंदरी नायक श्रियो अंग जो नितांत रते प्रसाद ब्रज गोपियों को जिस प्रकार सौभाग्य प्राप्त जैसा महान ऊंचा प्रेम है ऐसा और किसी को नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी और वेणु माधुरी की मोहन चमत्कारिता, जहां समस्त लक्ष्मियां मुग्ध हो जाती हैं, नारायण को छोड़ करके वे बेलवन में जाकर के तपस्या करती हैं कृष्ण के रास में प्रवेश करने के लिए, परंतु उनको भी प्रवेश अधिकार नहीं मिल पाया और अंततः विरोधी रही। कृष्ण ने कहा, लक्ष्मी जी ऐश्वर्य का अभिमान छोड़ो, छोड़ करके गोपी भाव लेकर के गोपी बन करके आओ। वो संभव नहीं, लक्ष्मी जी संपदा की अधिष्ठात्री देवी, वे कैसे छोड़ सकती हैं, इसलिए छोड़ने को तैयार नहीं। और कृष्ण कहते हैं, जहां पर प्रेम रस का प्रीति रस का आस्वादन करता हूं वहां पर ऐश्वर्य का क्या काम, वहां पर ऐश्वर्य का गंध तक प्रवेश नहीं हो पाता है, इसलिए कृष्ण उन्हें अपना नहीं रहे हैं। अंततः स्वर्ण रेखा के रूप में कृष्ण के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी विराज बना हुए, परंतु रास में गोपी बन करके रास नृत्य करके कृष्ण को आनंदित करेगी। जो प्रेम रस का प्रीति रस का कृष्ण आस्वादन करते हैं वह संभव नहीं हो पाया, इसलिए उद्धव जी कहते हैं, नारायण श्रीवंग जाओ नितांत रति प्रसाद। अनंत भगवान के अनंत अवतार, अनंत अवतारों की असंख्य लक्ष्मियां है, ये सभी लक्ष्मियां किसी को भी प्रवेश अधिकार नहीं मिल पाया तो औरों की बात क्या, देवियां तो वहां जा ही नहीं सकी। कमल के समान सुगंध अंग वाली ऐसे स्त्रियां तक प्रवेश नहीं कर सकी, औरों की बातें किया, जो कि रासो सभी भुजदंड गृहीत कंठ। भगवान ने रास रचाया और रास रूपी उत्सव, उस सब में सभापति का सर्वश्रेष्ठ आसन होता है और सर्व माननीय होता है, जो कुछ वचन कहे वही प्रामाणिक माना जाता है और उन्हीं का सर्वश्रेष्ठ आदर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस ब्रजभूमि में जिस राष्ट्रपति उत्सव को मनाया, उस उत्सव में एकमात्र ब्रज गोपियां सम्मान के पात्री बनी, जो सम्मानित हुई हुआ और किसी का प्रवेश अधिकार नहीं मिल पाया। और उनको सम्मानित करते हुए कृष्ण ने क्या किया, संपूर्ण विश्व जगत जिस भगवान के करुणा के प्रार्थी हैं, सभी कृष्ण की आराधना करते हैं, कृष्ण से चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम में विवल होकर कहीं गोपियां मार करके रूठ करके चली न जाए, इसलिए कृष्ण स्वयं उनके अनुग्रह प्रार्थी बन करके आज उनसे कहीं मार न कर ले, इसलिए अनुग्रह की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार कृष्ण ने जहां रास रूपी उत्सव में गोपियों के प्रेम को बढ़ाया, मान मनाया और उनके महान प्रेम को ऊंचा किया, ऐसे गोपियों के भाव सर्वश्रेष्ठ थे। महाप्रभु जी सुन करके प्रसन्न हुए, बोले कि हाँ ये गोपियों का भाव है और ये उत्तम है, परंतु इससे आगे और भी मैं जानना चाहता हूँ। ये सभी बातें जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने रायरवंद से निकाली और इससे आगे चल करके राधा प्रेम का वर्णन करेंगे, संसार में सर्वश्रेष्ठ शक्ति नंदिनी श्री राधा है, उनसे बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ शक्ति नहीं है, इसलिए उन सब के विषय में भी विचार है, जो कि आज समय अधिक बुरा है और गुरु जी के वचनामृत का हम लोग श्रवण करने की प्यासी है, इसलिए मैं अपने विशिष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं अपना वक्तव्य आज नहीं बदलता,
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वर्णन किया। ओम प्रकाश जी दो शब्द बोलिए। वहीं से बोलिए।
ओम ज्ञानमिवांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम पादाय आचार्यसिंहरूपिणे श्रीमूर्तिप्रज्ञानकेशस्य नामे नमो महावदान्याय कृष्णप्रियप्रदाय कृष्णाय प्रत्युन्दनाम्नि भक्ते नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद प्रज्ञान केशवभूषण महाराज जी के अगर बात करता हूँ, कोटि कोटि शास्त्र मंत्रण पढ़ते हुए उनके अंतिम कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे श्री शिक्षा गुरुपाद पत्न हम सब पूज्य पाठ महाराज जी के मुखारविंद से सुनने के लिए आतुर हैं। महाराज से दो तीन दिन विलंब से पधारे, हम सब लोग अपनी दृष्टि से झांकते रहे महाराज श्री का, यहाँ आकर के हमको वाणी से भविष्य करेंगे। इस बीच उन्होंने मुझे आदेश दिया है, मैं कुछ बोल रहा हूँ त्रुटि बहुत क्षमा करेंगे सभी प्रश्नों में। हम लोगों ने सुना है कि हरि गुरु वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। हरि गुरु वैष्णव, हरि अर्थात भगवान, भगवान कौन है जिनमें संपूर्ण ऐसी शक्ति विराजमान है जिससे वे जगत को आकर्षित कर लेते हैं और जिनमें संपूर्ण रूप से ज्ञान वैराग्य श्री वीर्य इत्यादि गुण हैं। ऐसे महा ऐसे भगवान की सेवा करना जीव का एकमात्र कर्तव्य है। यदि वह जीव मनुष्य योनि प्राप्त करके और भगवान की सेवा नहीं करता है तो यह सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उसका। यदि हम इस जीवन में फिर कोटि कोटि योनियों में भ्रमित करते हुए हमारा मूल का स्वभाव जो है वो स्वरूप क्या है, वह भगवान के दास है। हम लोग भगवान दास है, दास है भगवान के और भगवान के धाम से हम लोग यहाँ आए हुए हैं और भूल बस हमने यहाँ पर संसार में भ्रमित हो रहे हैं। यदि सदगुरु का पता से प्राप्त हो जाए तो कोटि कोटि लोग यहाँ विराजमान है इस संसार में जिनके ऊपर गुरु वैष्णव की कृपा नहीं हो पाती है। बड़े सौभाग्यवान है वे व्यक्ति जिन पर सदगुरु की कृपा होती है, वैष्णव की कृपा होती है, वह कृपा प्राप्त करके भगवान के चरणों में चले जाते हैं और भगवान उनको अपने भाव में बुला लेते हैं। ऐसे भगवान को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, उसके लिए हमें पात्र बनना पड़ेगा। पात्र बनने के लिए आवश्यक है, जैसे एक मैं बता रहा था कुछ 5-7 महिलाएं यहाँ थी, वहां थी यात्री को तो यहाँ आदित है। मैं बता दूं कि पात्र बनने के लिए जैसे एक पुलिस वाला होता है, यदि उसके शरीर पर ड्रेस है तो हम कहेंगे हाँ वह पुलिस वाला है। यदि वो ड्रेस को उतार ले तो हम उसे पुलिस वाला नहीं कह सकते, उसका आगे से पालना नहीं कर सकते। इसलिए हमें भगवान का भक्त बनने के लिए एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए हमारे पास में, और वह यूनिफॉर्म है हमारे गले में कंठी हो तुलसी जी की, गोपी चंदन हो। गोपी चंदन का इतना महत्व है कि भगवान ने एक बार अभिनय किया सिर दर्द का और कहा नारायण जी के उसी बीच में कहो क्या समाचार है, कैसे आज आप स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि जो है दर्द हो रहा है, कहीं गोपियां अपने चरणों की धूली दे दें तो मैं उससे लगा कि मुझे आराम मिल सकता है। नारायण जी गए द्वारका में घूमे, समस्त गोपियों ने मना कर दिया क्या हमें नरक में जाना है, हम अपने चरणों की धूलि वहां देंगे उनको। फिर वह उन्हें ब्रज में आए, ब्रज में उन्होंने धूलि मांगी तो उन्होंने कहा कि महाराज आप तो भगवान की पौड़ियां ले जाओ, हमें यदि यह नरक मिलता है स्वीकार है तो हमारे प्रभु को आराम मिलेंगे, वो स्वस्थ हो जाए। तो यह है सचमुच भगवान की सेवा। तो गोपी चंदन हमारा धारण किए हुए हैं उस मुंड के रूप में, गले में कंठी है, तो निश्चित रूप से हम जानेंगे और हमने सदगुरु का आश्रय ले लिया है वही यह यूनिफॉर्म पहन सकता है, अन्यथा नहीं पहन सकता। तो हम कहेंगे कि वास्तव में हम लोग भक्त हैं। आपने देखा होगा कि गली मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते भौंवा करते रहते हैं और उसमें उन कुत्तों में हम उनको मारने के लिए भागते हैं, डंडे से मार देते हैं, पत्थर से डंडे से, लेकिन जिनके जिस कुत्ते गले में पैंट बंधा हुआ है उस कुत्ते को हम लोग मारते हैं और जानते हैं कि हमने इसको मार दिया तो ये कल ही इसका मालिक आसपास ही रहता है, वह कोर्ट में खड़ा कर देगा। इसलिए ये जो हमारे शरीर में जो ये बेल्ट है जो गुरुदेव देते हैं कृपा करके, यह तुलसी घंटी ये एक ऐसा बेल्ट है, एक ऐसी पहचान है, एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन है, इसके द्वारा यमराज के दूत जब आएंगे ना तो वह लौट जाएंगे। तो हमारी मृत्यु कहीं भी किसी भी जगह पर हो सकती है, सड़क पर, रेल में, बस में, हवाई जहाज में, घर पर, अस्पताल में, लेकिन दूत तो आएंगे लेने के लिए, वो दूत आपके स्वरूप को देख करके लौट जाएंगे। उनका साहस नहीं होगा कि वो तुमको पकड़ ले जाए, क्योंकि यमराज ने कह रखा है दूतो तुम उस व्यक्ति को हमारे राज्य मत लाना जिसके गले में तुलसी कंठी पड़ी हुई है, जो कुंडन लगाते हैं और जो भगवान के भक्त हैं, तो तुलसी के कंठी वही पहनेगा जो भगवान का नाम लेता है। भगवान का नाम कहा जाता है कि एक बार किसी ने नाम ले लिया या एक बार किसी भगवान के चरणों में नमन कर लिया उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह मातृगर्भ में नहीं आता, वह माता का दूध नहीं पीता। किंतु एक बार नाम भी कैसा हो, रूप गोस्वामी ने बताया कि बिना किसी अपराध के उत्तम भक्ति के साथ में हो, अर्थात किसी अन्ना सूचन ज्ञान करता प्रथम, यह किसी प्रकार की हमारे हृदय में कोई अन्य अभिलाषाएं ना हो। यदि अभिलाषाएं हैं तो वह नाम नाम नहीं है, वह तो एक अपना स्वार्थ पूरा करने का साधन मात्र हो जाएगा। भगवान ने हमको बिना मांगे सब कुछ दे दिया, हम जिस उम्र के हैं यहाँ बैठे हुए हैं, सब माताएं बहने हैं और व्यक्ति हैं, इनके घर में कोई अभाव नहीं है और उस अभाव की पूर्ति में होगी भी नहीं यदि है तो। सबके पास गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, मकान हैं, बच्चे हैं, अब हम लोग बिना मांगे मिल गए तो आपको हम विचार करें कि हमने पत्थर मांगा था नहीं मांगा था, मिल गया अपने आप। क्योंकि यह लाभ हानि यश अपयश आयु ये सब विधाता जो योग माया है वह जीव के गर्भ में आते ही और उत्पन्न होने के छठे दिन लग जाती है भक्त में, तुमको इतना लाभ होगा तो अगर गाड़ी घोड़ी घोड़ा घोड़ी होगी कि होगी, मकान होगा कि नहीं होगा, तो इस प्रकार से हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। उस मिशन भोग की ओर दौड़ेंगे, हम अपने आप को वंचित कर लेंगे उस प्रभु की कृपा से। इसलिए अभी समय है, बहुत सारा समय बीत गया है, वो परम सौभाग्यवान है जिनकी आयु छोटी है वो अभी से भजन करें, तो अभ्यास करते करते हम अवश्य अंतिम सांस तक भजन कर सकते हैं। और ये समय है कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन, उनकी चरण धूलि, उनका चरणामृत, ये एक साधन है भक्ति में अक्सर होने के लिए। ये तीन धर्म रहे हैं महापुरुषों का, गुरुदेव का, वैष्णवों का चरणामृत, उनकी चरण धूलि और उनका उच्चिष्ट। उच्चिष्ट से अर्थ ये भी है कि उनकी वचनामृत जो वो कहते हैं हम उनका पान करें, उनका आस्वादन करें और उनके ऊपर हम लोग अमल करें। तो यह वैष्णव का एक वेशभूषा है, हम इससे वंचित ना हो। यदि हम इससे वंचित हो गए हम कभी भी जीवन में ये जीवन बीत जाएगा और कोटि कोटि जन्म बीत जाएंगे, हम कुत्ते शुगर बिल्ली चूहा बनते रहेंगे, हमें हम कष्ट पाते रहेंगे और कष्ट इस योनि में भी है, ये कष्ट उनको नहीं है इस योनि में, मस्त योनि में जो भगवान का नाम करते हैं। सब कुछ में वो चाहे गृहस्थी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, घर में ही रहते हो, उनको कष्ट एक ग्रहण विश्वास भी नहीं है जो भगवान का भजन करते हैं। हम अपना कृष्ण करके भी कृष्ण का संसार कराए। कृष्ण संसार कैसा होता है, हम जो कुछ कर रहे हैं इन क्रियाओं में कोई तब्दील करने का अवसर नहीं है। हम उस उन सारी क्रियाओं को उन कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए करें। हम जो कुछ उठते हैं जल्दी, हम जो कुछ करते हैं बाजार उठते ही, इसलिए करते हैं कि दांत साफ हो जाए, इसलिए हमारे मुंह में जाएंगे भगवान भगवान को हमारे मुंह से दुर्गंध नहीं आए। स्नान इसलिए करते हैं, साबुन भी खरीदेंगे इसलिए खरीदेंगे कि हमको भगवान की सेवा में करना। साबुन खरीदना, आटा दाल चावल खरीदना भगवान की सेवा के लिए है, फूल खरीदना भगवान की सेवा के लिए, अपने शरीर के कपड़े भी खरीदना भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि कपड़े नहीं होंगे क्या हम जो है निरस्त होकर सेवा करेंगे भगवान की, अतः नहीं कर सकते। इस प्रकार से हमारी सारी क्रियाएं सारी क्रिया कला हमारे जीवन के हम उनको बोर दे खाली और कुछ नहीं करना है। यह चल रहा है जीवन चलते रहने दीजिए, किंतु उन सब कर्मों को भगवान की ओर मोड़ दीजिए, भगवान को समर्पित कर दीजिए। वह है सबसे बड़ी ये अपने जीवन बदलने का एक तरीका है। हम जा रहे हैं नौकरी पर, साधु वाली भोजन मैंने ठाकुर जी पठा पा लिया, हमने पाया, बच्चों ने पाया, पत्नी ने पाया, इनका करता बड़ा सौभाग्य है। तुलसी दल भोजन करके ठाकुर जी को भोग दे दिया और उस प्रसाद को हम पा रहे हैं। क्या प्रसाद पाने का सौभाग्य सबको प्राप्त होता है? जो होटलों में खाते हैं पीते हैं, होटलों या इधर उधर खाते हैं, हवाई जहाज में खाते हैं, जहां तक खा लेते हैं, इनको प्रसाद महाप्रसाद भगवान का नहीं मिलता है, वो बड़े अभागे हैं वो। लेकिन इन सारी शिक्षाओं से इन हरि कथाओं से हम निरंतर गुरु वैष्णव का स्नान करते रहते हैं। कुछ बात महाराज से यहाँ कभी यहाँ आते हैं साल में एक बार, आप लोग भी वहाँ आते हैं कि चरणों में वृंदावन मथुरा गोवर्धन इत्यादि है, हम सब वृंदावन सुनते रहते हैं। हमें अपने सदगुरुदेव का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करें। अनुकरण एक हो जाएगा एक बेहतर करता है, अनुसरण करें जो वो कहें गलत हम करें। इसलिए ठाकुर जी को महाप्रसाद में करके हम सब खाएं। आनंद की बात है, नौकरी पे जा रहे हैं 10 बजे तो ठीक 10 बजे हम जा रहे हैं नौकरी, इसलिए जा रहे हैं फिर भगवान की सेवा में जा रहे हैं। वहां से हमें मुद्राएं मिलेंगी 1 तारीख को, किसी को 5,000 किसी को 10,000 किसी को 50,000 रुपये, उन मुद्राओं को हम जो ठाकुर जी की सेवा में लगाएंगे। इसलिए अवस्था इस बात की है हम अपने सारे कर्मों को भगवान को मोड़ लें। तो संकेत हो चुका है, मैं स्वर्थ इच्छा तो बहुत थी बोलने की, तो कभी अवसर मिलेगा मैं बोलूंगा। मैं यही तक अपनी वाणी को श्राप देता हूँ। तो अच्छा गुरु हस्ति कृपा सुंदर भय प्रावण्य की हो वैष्णव की हो नमो नमः।
उससे और दुर्लभ है वो व्यक्ति जो इन मानव जन्म को सही उपयोग करता है। लेकिन इनमें से भी करोड़ लोगों से बहुत कम लोग जो सदगुरु के पाद पदों में आश्रय ग्रहण करते हैं। ये गुरुदेव कोई ऐसी साधारण वस्तु नहीं है, जो देव गुरु हैं और देव जो अपनी महिमा अपने गुण से बहुत गुरु है अर्थात लघु नहीं है, उनमें लघु तो नहीं है, वो साधारण में नहीं है, इसलिए गुरु वस्तु समझना बहुत कठिन है। ये अचिंत्य है, जो अचिंत्य है वहां चिंता के परपार में, ये भगवान की कृपा से ही कोई गुरुदेव को प्राप्त करता है, इसलिए शास्त्र में कहा गया कि कृष्ण कृपा के गुरु है। ये गुरुदेव देव है, उनका गुण ऐसा है, महिमा ऐसा सारा जगत में वो प्रकाशित होता है, वो अपने आप ही प्रकाशित होते हैं। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, नाम प्रकाश सर्वस्य जोग माया समाहूत मुड़ो नाम ही जाना। जैसे भगवान सर्वत्र प्रकाश नहीं होते हैं, जोगमय शक्ति उनको आवृत करके रखता है, मूल लोग उनको नहीं समझ पाते हैं, इसलिए गुरुदेव को समझना बड़ा कठिन है। ये वही व्यक्ति गुरुदेव को समझ पाता है, गुरुदेव के पाद पद में आश्रय करता है, जिसके कोई भगवान की कृपा हो, गुरुदेव की अपनी कृपा हो, ये तो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप लोग गुरुदेव की मुखारविंद से हरिकथा में श्रवण कर रहे हैं, ये हरिकथा अमृत है। स्वर्ग में हम जानते हैं कि अमृत मिलता है, लेकिन वह अमृत भी पानी से जो लाभ होता है लोग अमृत प्रदान करते हैं, लेकिन वो अमृत पे कोई मूल्य नहीं है। गुरुदेव की मुखारविंद से जो हरिकथा में तो कोई पान करेगा तो उसका जन्म जन्म में वो क्या लाभ होगा, हम की भक्ति वृद्धि जागृत हो जाए। तो गुरुदेव एक बद्ध जीव को प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कि दया क्या है, ये जीव के विपरीत रुचि को परिवर्तन करके जो भगवत उन्मुखी करा सकते हैं, ये करना ही दया है। ये दया से गुरुदेव भी कर सकते हैं। ये गुरुदेव क्या करते हैं, ये लाखों करोड़ जन्म ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्यवान जीव, हम ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे हैं, बहुत जन्मों में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन इन सब जन्मों में भ्रमण करते करते बहुत सौभाग्यवश एक मानव जन्म मिला है, लेकिन ये जन्म अगर सद्गुरु की साक्षात होता है, गुरुदेव क्या करते हैं, उसके जो विपरीत रुचि है, जो भोग वासना है, जो अनंत कोटि जन्म में वो अपना इंद्र सुख कर रहा है, उसकी रुचि को परिवर्तन करके भगवत उन्मुखी करा देते हैं। इसलिए महाजन भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा है, विषय जे रुचि वे अच्छे अमार सही मत प्रीति हो चरण तुम्हार। ये बहुत साधारण वाक्य लेकिन इस बहुत गंभीर है। ये जो रुचि हम लोग की विषय में है संसार में, वही रुचि को भगवत पाद पद्म में करा सकते हैं। ये गुरुदेव, गुरुदेव में वो शक्ति है, लेकिन जीव कैसे प्राप्त कर सकता है उसको, ये गुरुदेव की कृपा से सिर्फ ये भगवत उनमें हो सकते हैं, भगवान पाद पद्म में रहते जागृत हो सकता है, ये तो नहीं। लेकिन कोई कह सकता है गुरुदेव हमारे पर कृपा नहीं करते हैं, इसलिए नरपुंसा को कहते हैं श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु, ये गुरुदेव करुणा की सागर है, भगवान भी करुणा की सागर है, क्या अंतर है, इसलिए कहते हैं रघुनाथ ठाकुर अधम जनर बंधु। हमारे आचार्य विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर ने इसके टीका में बहुत सुंदर से लिखा है कि ये अधम जनर बंधु क्या है, ये गुरुदेव अगर करुणा देते हैं तो हम लोग क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्यों धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा है वो पात्र नहीं है, और पात्र में बहुत छेद है, इसमें भगवान गुरुदेव की करुणा हम लोग नहीं रख सकते हैं, लेकिन गुरुदेव अहम जन बंधुआ नहीं वो पात्र भी देते हैं, इतना दयालु है गुरुदेव अपने, इतना जीव के प्रति इतना दयालु है। इस महाप्रभु जैसे सचिनंदन बताया गया, सचिनंदन गौरहरी इसे कलिजुग के कलुषित जीव को अपना अनर्थ को साफ करके अपनी गोद में ले लेते हैं, यही बात सुनता है भगवान में सब जीव को अपनी गोद में ले लेते हैं। उत्तम अधम किछो ना बचिल जाचिया दिल को गोल कहे प्रेमानंद एवं गौरांग उदय धरिया बोल, कि उत्तम अधम यज्ञ अयज्ञ विचार नहीं करते हैं भगवान, कृष्ण कर सकते हैं, कोई अवत अन्य भगवत अवतार कर सकते हैं, महाप्रभु नहीं करते हैं, किसी को नहीं दंड देते हैं। महाप्रभु के चरण और समग्र भागवत की और बहुत कुछ श्रवण किया, उसमें हम देखते हैं कि महाप्रभु की करुणा अपार है, क्योंकि उन्होंने ये विश्व पतिता पाषंडी किसी भी उन्होंने दंड नहीं किया, वध नहीं किया, अति दूरवर्ती पतित पाषंडी प्राणी न मारिल कारे हरिनाम दिया हृदय सुधिल जाची किया घरे। महाप्रभु क्या करते हैं, किसको दंड नहीं देते हैं, यहां तक कि कोई असुर है राक्षस है उसको वध नहीं करते हैं, उसका हृदय को शोधन कर देते हैं। महाप्रभु हृदय शोधन करके तो उसको शुद्ध बनाते हैं और उसमें प्रेम देते हैं। यही गुरुदेव है महाप्रभु के प्रकाश, इसलिए गुरुदेव भी वही करते हैं जीव के हृदय में, चाहे उनके उत्तम हो अधम हो, कोई बहुत योग्यता को योग्य अयोग्य विचार नहीं करते हैं, ऐसे पतित भाव है गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव की चरणाश्रय के बिना कोई कभी भी नहीं भक्ति प्राप्त हो सकता है। हम लोग जो कुछ भी श्रवण कर रहे हैं साध्य के बारे में, साधन के बारे में, जो कुछ भी है, गुरुदेव की चरणाश्रय बिना कभी नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए अर्जुन भगवत गीता में कहते हैं द्वितीय अध्याय में कहते हैं कार्पण्य दोष उपज स्वभाव पृच्छामि तम धर्म सम्मुचिता जस श्रेयम निश्चितम गृहीतन में शिष्य देहम साधिवाम त्वाम प्रपन्नम। कहते हैं कृष्णा मैं कुछ निश्चय नहीं कर पाया जीवन में, मेरा क्या लक्ष्य है, मैं क्या करूंगा, कैसे सदगति प्राप्त होऊंगा, कुछ विचार नहीं करता कर सकता हूं, इतना बदम हूं अधम हूं। कहते जस श्रेयम मेरे लिए जो श्रेय है श्रेय वस्तु उसी को आप उपदेश कीजिए, शोधन कीजिए, शिष्य देहम साधिवाम मुझे शुद्ध बनाइए, शोधन कीजिए, मैं आपकी चरण में प्रपन्न होगा। यही है गुरु के पादपद्म में संपूर्ण शरणागति लाभ होना चाहिए, नहीं तो कभी हम लोग भक्ति प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जो भक्ति महिमा हम लोग श्रवण करें तभी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं अधिक नहीं बोलना चाहता हूँ कि ये गुरुदेव के पास मुखारविंद से हम हरिकथा तो श्रवण कर रहे हैं, तो गुरुदेव के पादपद्म में आश्रय ग्रहण करें तो हमारे जन्म सार्थक है, तो हम लोग ये जन्म लेना हमारा जन्म सार्थक है। इतना कह करके अपने भक्त
कृष्णदास कृष्णदास एक तो कीर्तन कर दो
जगा दे।
Thank you.
चालू करो
सचि पुत्रमत्र स्वरूपम् रूपम् तस्य गजमुरीपुरिङ्मा तुरिङ्गोष्ठवाटिम् राधाकुण्डम् गिरिवरमहो राधिका माधवासम् प्राप्तो यस्य प्रथिति कृपया श्रीगुरुम् तम् नतोऽस्मि वंशाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरद्विषे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाचरणं। सप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम ओम विष्णुपाद श्रुत सत्सिमद् भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि श्रद्धा दंडवती पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात सन्यासीगण वैष्णव वैष्णवीगण सज्जन महोदय बड़ी सुंदर रूप से हरिकथा चल रही है। अभी रामानंद संवाद से श्रीमान भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी ने शांत लाइट चली गई। ओ अभी श्रीमान तीर्थ महाराज जी ने शांत दास सख्य बात्सल और मधुर रस का वर्णन बहुत शास्त्रीय विवेचनों के आधार पर किया। उसमें भी गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ और गोपियों में भी राधा जी का प्रेम श्रेष्ठ है ये बतलाने जा रहे थे। आगे कल हमने इसी विषय पर मैं बतला रहा था, पहले शतान भक्त ध्रुव जी का बतलाया, ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज जी का, शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज जी का, और इसे भी बढ़कर के प्रेमी भक्त हनुमान जी को बताया। यदि प्रभु की सेवा करनी है तो हनुमान जैसा होना चाहिए। कल हमने कुछ कुछ बतलाया, उनका सारा जीवन एक एक श्वास भगवान की सेवा के लिए है। जिस समय राम रावण का युद्ध हो रहा था, मेघनाद मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, रावण ने देखा है अब हमारे तरफ से लड़ने वाला कौन है, माने कुल का ध्वंस करना चाहता, इसलिए याद आई हमारा एक बेटा है उसका नाम मही रावण है। वो सब प्रकार के मायाओं को जानता है, इसलिए याद किया, उसको स्मरण किया, दूत भेजा, वो आया। रावण ने उससे कहा जब मेघनाद मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, सभी मारे गए हैं, अब तुम ही आप हमारे आश्रय हो, तुम ऐसा उपाय करो जिससे कि ये दोनों मारे जाएं और युद्ध समाप्त हो जाए। भाई रावण ने कहा जे कोई चिंता की बात नहीं। वो विभीषण का रूप बना करके रात में आया और राम और लक्ष्मण जी को हरण करके अपने राज्य पाताल लोक में ले गया, और वहां उसी रात में राम लक्ष्मण जी को देवी जी को बलि चढ़ाना चाहता। जब वो लेकर के चला गया लंका से, तो राम के खेमे में बहुत ही दुख होने लगा, कहां ले गया, कौन ले गया, कोई पता नहीं। विभीषण जी के आने के बाद में हनुमान जी को उन्होंने बतलाया जे हमारा रूप केवल मही रावण धारण कर सकता है, और शायद वही आकर के ले गया है। सुन करके हनुमान जी सट वहां गए पाताल लोक में। जब प्रवेश करने लगे तो एक बंदर उनसे युद्ध करने लगा, पहले हमसे युद्ध करके प्रवेश करो। हनुमान जी ने कहा जे तुम कौन हो, तो मैं हनुमान जी का बेटा हूं। अरे हमको बेटा कब हुआ, मैं तो हनुमान हूं। ओ बड़े सौभाग्य की बात है, आज पिताजी से भेंट हुई, जब आप समुद्र लंका जला करके समुद्र में कूदे तो आपसे पसीना आया, पसीने के बूंद से एक मछली उसे ग्रहण कर लिया और उस समय पैदा हुआ। मैं तब से इसका दूत बन करके इसके राज्य की मैं रक्षा करता हूं, आपको जाने नहीं दूंगा। हनुमान ने उसे परास्त करके उसी की पूंछ से उसे बांध दिया, और बांध करके भीतर में गए, देखा जे रात के समय में सारे असुर लोग मही रावण इत्यादि सब जुटे हैं और राम लक्ष्मण को बलि देने के लिए तैयार किया है, लाल कपड़े इत्यादि बांध दिए हैं, पूछ रहे हैं जे तुमको क्या जरूरत है, अंतिम समय में बतलाओ। राम लक्ष्मण एक दूसरे की तरफ में देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इतने में हनुमान जी बहुत सुख स्वरूप धारण करके एक फूल के अंदर में प्रवेश कर गए, और वो फूल देवी के मस्तक पर चढ़ाया गया, चढ़ाने के साथ विराट रूप धारण करके बहुत जोर से गर्जन किया, देवी को पाताल में पहुंचा दिया और उन्हीं के हथियारों को लेकर के तलवार इत्यादि खड़ग और उनको बलि दे करके स्वाहा कर दिया। फिर राम को लक्ष्मण जी को लेकर के लंका में रणभूमि में पहुंचे, उनको देख करके सब लोग ऐसे ही जी उठे जैसे मृतक व्यक्ति के हृदय में प्राण आ जाते हैं। ऐसे ऐसे सेवाएं करते हैं। किंतु एक बात है, अभी बतला रहे थे तित महाराज, जिनकी सेवा में उस ऐश्वर्य भाव उसे प्रसन्न नहीं होते उतने, वो ऐश्वर्य भाव किसको कहते हैं? ऐश्वर्य भाव उसको कहते हैं जो सहज ही इस जगत में न हो सके, कोई ऐसा न कर सके। जैसे कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया, ये कृष्ण का ऐश्वर्य भाव है। कालिंदी के जल में कूद पड़े, जहां पर कि पानी खोल रहा था 20 से 8 के समान, दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। इस तरह से कृष्ण के बहुत से अलौकिक कार्य हैं, ये ऐश्वर्य है। हनुमान जी में कुछ ऐश्वर्य का भाव है, अपना जूठा प्रभु को नहीं दे सकते, राम के पलंग पर बैठ करके सो नहीं सकते, उनको गले से लगा नहीं सकते, इस प्रेम में कुछ कमी है। आइए आइए आइए,
सब कुछ चल है तो बस आपका आशीर्वाद।
तो बैठी, मैं ये सब किस लिए बतला रहा हूं? ये तीर्थ महाराज जी और सब लोग किस लिए बतला रहे हैं? तुम लोग समझो, यदि कृष्ण आकर के कहेंगे ये तुम क्या चाहते हो, कोई घटिया वर्ण मत ना, इन्हें समझो ये कौन सा प्रेम सबसे श्रेष्ठ है, किसके द्वारा कृष्ण, किस प्रेम से कृष्ण वशीभूत हो जाएंगे, इसलिए विशद रूप से हम लोग बतला रहे हैं। इसलिए सावधानी से सुनेंगे, सब समय सुनने का मौका नहीं मिलेगा। आजकल बहुत से लोग पाठक आते हैं, अंट संट बातें कहते, कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। खबरदार, ऐसा साधु संत को मत सुनना। कोई कहेंगे जी मैं भगवान में मिल जाऊंगा, तुम भी ब्रह्म हो हम भी ब्रह्म, ऐसे लोगों की बात मत सुनना। गीता भागवत की बात मानते हो, कृष्ण को भगवान मानते हो, राम को भगवान मानते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, ऐसे गुरु या वैष्णव की बात सुनना। तो हनुमान जी प्रेम तो करते हैं, किंतु प्रेम में कुछ ऐश्वर्य भाव है। भगवान को समझते हैं कि अलौकिक, ये भगवान है। मनुष्य रूप धारण करने पर भी ये साधारण मनुष्य नहीं है, राम भगवान है। कभी कभी उनको जा सकते, इसलिए उनकी सेवा में कुछ कमी हो जाती है, प्रसन्न तो होते हैं किंतु वशीभूत नहीं हो पाते। दूसरी तरफ अब चले पांडव लोग हैं, ये प्रेम पर भक्त कहलाते हैं, इनका प्रेम कुछ ऊंचा है। एक समय नारद जी शंकर जी के पास में गए, बोले शंकर जी इस समय संसार में भगवान का सबसे बड़े भक्त कौन है, मैं उनको दर्शन करना चाहता हूं। शंकर जी बोले, यदि भक्त देखना है इंद्रप्रस्थ चले जाओ और अर्जुन के महल में जाना। नारद जी वीणा बजाते हुए वहां गए, घर में प्रवेश करते ही देखा क्या, एक पलंग के ऊपर में कृष्ण और अर्जुन दोनों सोए हुए हैं। अर्जुन का पैर कृष्ण के सिर की तरफ और कृष्ण का पैर अर्जुन के सिर की तरफ उनके छाती से होते हुए गया है। अर्जुन के पैर को सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि पंखे झल रही हैं सेवा कर, और कृष्ण के चरणों को द्रौपदी सेवा कर रहे, और अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 ये निकल रहा है, देख करके स्तंभित हो। हनुमान जी एक पलंग पर राम के साथ में नहीं सो सकते, उनकी तो बात अलग रहे। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भी नहीं सो सकते एक पलंग के ऊपर, भाई हैं किंतु उनमें दास्य भाव। सीता जी उनकी महारानी हैं, प्रिया हैं, किंतु उनमें भी दास्य भाव है। राम ने उनको घर से निकाल दिया दो बार, पहली बार लंका में रहते हुए जब रावण पर विजय राम ने पाया उस समय सीता जी को बुलाया गया, विभीषण जी उनको ले आए, सेनाओं में सबकी दृष्टि लगी सीता जी को दर्शन करने के लिए। राम ने कहा जब पालकी वहीं पर खड़ी कर दो, रोक दो, और सीता जी पैदल आए जो सभी लोग उनको देख सकें। सीता जी पैदल वहां से आए, राम के सामने आई तो रामचंद्र जी ने कहा बड़े गंभीर होकर के, देखो तुम्हारे लिए मैंने रावण को वध नहीं किया, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय की स्त्री को कोई अपहरण करके ले जाए उसे नहीं सह सकता, इसलिए क्षत्रियों की आन की रक्षा करने के लिए मैंने रावण को मारा, तुम्हारे लिए तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, हमारे पास रहने की जरूरत नहीं। लक्ष्मण जी तो बड़े बिगड़ गए। उस समय सीता जी ने लक्ष्मण को कहा चीता लगा दो, लक्ष्मण जी बेचारे क्या करते, सेवक चीता लगा दी, लकड़ी उकड़ी सब लगा करके, और सीता जी उस पर बैठ करके अपने शरीर से आग निकाला और चीता जलने लगी। उस समय अग्निदेव सीता जी को लेकर के प्रकट हुए, बोले जे सीता जी पवित्र हैं आप इन्हें ग्रहण। उसमें महाराज दस